वक्त है कम लंबी मंजिल तुम्हें तेज कदम चलना होगा हे परम तपस्या के पथिको तुम्हें नूतन पथ रचना होगा वक्त है कम लंबी मंजिल तुम्हें तेज कदम चलना
ओम शांति। तो सभी बाबा के बच्चे आत्माएं गहरे ज्ञान और तपस्या की राह पर बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं, है ना? ऐसा महसूस होता होगा कि जैसे हम एक बाबा कहते हैं ना, हम एक कुटिया में बैठी हूँ आत्मा, ऐसा महसूस होता होगा। बस सबके बीच में पर फिर भी अकेले में बाबा के साथ बैठे हैं, ऐसा अनुभव होता होगा। एक से एक बढ़िया बाबा के विशेष रतन आप सबकी पालना बाबा की ओर से कर रहे हैं, यही इस भूमि की विशेषता है। तो अभी हम सबके सामने राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी चक्रधारी दीदी जी हाजिर है। हम एक हाथ की ताली से दीदी का हार्दिक स्वागत करते हैं। बाबा के विशेष रतन है, चक्रधारी नाम भी बाबा ने रखा हुआ है, समझा? पिछले 50 से ज्यादा वर्षों से बाबा के यज्ञ सेवा में उपस्थित है। हमारे वरिष्ठ भाई जगदीश भाई जी के साथ भी आपने बहुत ज्यादा समय रहकर के सेवाएं की है, गुलजार दादी के साथ भी रहकर के सेवाएं की है। आप अभी विशेष रशिया की सेवा को भी संभाल रहे हैं, जो अभी दिन दोगुनी रात चौगुनी गति से बहुत आगे बढ़ रहा है। रशिया भी ऐसा लग रहा है जैसे कि इंडिया हो, बहुत अच्छी सेवा हो रही है। आप महिला विंग की चेयरपर्सन भी हैं और आप सभी को पता होगा अभी ज्ञान सरोवर में महिला विंग की कॉन्फ्रेंस भी चल रही है, फिर भी उसमें से विशेष समय निकाल करके हम सबके पास पहुंचे हैं। हम फिर से दीदी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप बहुत अच्छी चिंतनशील योगी तपस्विनी अनुभवी आत्मा है, साकार बाबा मम्मा का भी बहुत पालना लेकर के अनुभव लिया है। तो अभी हमें संगम योग के अंदर विशेष तीव्र पुरुषार्थ के लिए प्रेरणा देंगे, बातें बताएंगे। ओम शांति।
ओम शांति। हम बहुत सुंदर स्वस्थ आप सब ने लिया है बाबा की इस कर्म भूमि चरित्र भूमि पर, जहाँ केवल मात्र अभी के समय के अनुसार यात्री यात्रा करते हैं और यात्रा में भी यहाँ पड़ाव कुछ दिनों का भी नहीं होता, केवल इधर से आए और उधर से चले गए। जब बाप दादा व्यक्त हुए और साकार में भी बाबा यही शब्द बोला करते थे कि बच्चे समय ऐसा आएगा जब बच्चे इधर से आएंगे इधर से चले जाएंगे। समझ नहीं आता था कि ये कैसे होगा, इधर से आएंगे और उधर से चले जाएंगे, रहेंगे कहाँ, खाएं पिएंगे कहाँ, ये कैसे चलेगा। कुछ मालूम नहीं था कि शांतिवन ऐसे हो जाएगा और इतने बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी। यहाँ तक उस समय किचन बहुत छोटी होती थी, जहाँ अभी मुझे नहीं अभी मालूम क्या चलता है, मानो सीढ़ी वगैरह बिकती हैं साइड में, तो छोटी सी किचन थी। तब बाबा ने यही शब्द कहा थे कि बच्चे ये तुम्हारी किचन जितनी है इतना तो यहाँ का एक बर्तन होगा, जिस बर्तन के अंदर सब्जी बनेगी, चावल बनेंगे। तो समझ नहीं आता था उस समय, बाबा कहते थे लेकिन मैं अपने अनुभव से कहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता था बाबा बहलाते हैं, क्योंकि वो समय ऐसा था कि जब बाहर निकलो तो छोटे छोटे बच्चे भी पीछे निकलते हुए ये बोलते थे कि ब्रह्मा कुमारी इसके पखंड से बचो, और दीवारों के ऊपर स्टेंसिल काट कर यही लिखा हुआ होता था। क्योंकि शुरू शुरू में दिल्ली में जब स्थापना हुई तो समय बहुत ही आर्य समाजी लोगों ने उल्टा प्रोपोगंडा किया था, और उसके कारण जन जन के अंदर इस प्रकार की आवाज थी, और समझते थे कि इतने लोग तो आ नहीं रहे, थोड़े से तो यहाँ आते हैं। 250 लोग जब आ जाते थे तो बाबा कहते थे लाल झंडी दिखा दो कि अभी और नहीं आएंगे, बहुत हो गए हैं, हाल फुल हो गया है। और बाबा कहता है इतने बच्चे हो जाएंगे जो इतना बड़ा पतीला होगा आपका, तो ये बाबा उनको बहलाते हैं कि लोग बहुत अगेंस्ट हैं, तो शायद बच्चे कहीं घबरा न जाएं। लेकिन सत्यता सत्य बाप बता सकते हैं, बच्चे जब तक उस सत्यता के समझ के उस लेवल तक पहुंचे, उस स्तर तक पहुंचे, तब तक वो उस बातों को पूरा समझते नहीं। धीरे धीरे बातें समझ में आती हैं। या आसपास जितने भी फ्लैट्स बने हुए हैं, उस समय ये फ्लैट्स किराए पर लिए जाते थे, और इधर मिनिस्टर्स कॉटेजेस हैं वे भी किराए पर ली जाती थी। मैं समझती उस समय 2 रुपया या 4 रुपया उसका किराया होता था, वो भी बहुत कॉस्टली लगता था, और वहां भाई बहनों को अगर ज्यादा हुए तो ठहराया जाता था। तब बच्चे कहते थे बाबा अगर हम इन मकान को खरीद लें तो कितना अच्छा होगा, आप आज्ञा दीजिए तो हम खरीद लें। तो बाबा केवल मात्र मुस्कुरा देते थे और यही कहते थे अभी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जानता है तीनों कालों को जानने वाला, कितने छोटे छोटे मकानों से गुजारा नहीं चलने वाला, इसके लिए तो विशाल भवन ही चाहिए। तो बाबा इतना ही कहता था अच्छा बच्चे आगे चल के देखेंगे। तो मैं देखती हूँ उस दाता को पहचानने के लिए भी बड़ा दिव्य नेत्र, बड़ा तीखा चाहिए, विशाल चाहिए, तभी उन्हें पहचान सकते हैं। कितनी अच्छी बात संसारिक रूप में कहानी बनी हुई है, लेकिन मैं देखती हूँ कि हम बच्चों को भी बाबा ने जब अपना बनाया तो कैसे बनाया। बड़ी प्रसिद्ध एक गाथा है कि अल्लाह अव्वल दीन की लालटेन थी जो सबकी मुराद पूरी कर देती थी, लेकिन एक बार अल्लाह अव्वल दीन की लालटेन गुम हो गई। गुम हो जाने पर बहुत ढूंढा लेकिन अल्लाह अव्वल दीन को लालटेन मिली नहीं। आखिर क्या तरीका आजमाया गया, उन्होंने पुरानी लालटेन गुम हो जाने के कारण हाथ में नई लालटेन पकड़ी और गली गली में जाकर एक आवाज लगाई कि पुरानी लालटेन दे दो नई लालटेन ले लो, पुरानी लालटेन दे दो नई लालटेन ले लो। तो एक बड़ा आकर्षण की बात है, बड़े तो ये समझेंगे कि शायद ये ऐसे ही बोल रहा है, पैसे भी पीछे मांगेगा, जैसे कई बार आते हैं कंबल पुराने दे दो नए कंबल ले लो, तो पैसा भी मांगते हैं। लेकिन बाबा वल्लाह अव्वल दीन की ये आवाज कि पुरानी लालटेन दे दो और नई लालटेन ले लो, तो कहते एक बच्चा ही था घर में, उस बच्चे ने देखा हमारे घर अभी अभी एक पुरानी लालटेन आई है, क्यों नहीं पुरानी लालटेन दे के मैं नई नई लालटेन ले लूंगी, मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी अंदर से जाकर पुरानी लालटेन ले आया और नई लालटेन लेकर खुशी खुशी अंदर चला गया, और अल्लाह अव्वल दीन बड़ा खुश हुआ क्योंकि वो पुरानी लालटेन उसकी वही लालटेन थी जो उसकी गुम हो गई थी। और इस प्रकार की आवाज लगाने से उसे अपनी पुरानी खोई हुई लालटेन मिल गई। ठीक बाबा भी गायन है अल्लाह वो सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा जिसे कोई अल्लाह के नाम से पुकारते हैं, और अव्वल का मतलब ही है नंबर 1, और दीन का अर्थ है धर्म। तो परमपिता परमात्मा नंबर वन धर्म की जब स्थापना करते हैं तो उनकी जो लालटेन गुम हो चुकी हैं, जो सर्व आत्माओं को मुराद हासिल कराती थी, वो कौन सी लालटेन थी? वो हम ही बाबा के वो बच्चे थे जिन्होंने बाप समान बन बाप की सेवा में अपने जीवन को दिया था। लेकिन आधा कल्प से जब ये लालटेन गुम हो गई, तो गुम लालटेन को पाने के लिए बाबा ने आज क्या कहा है? पुराना कखपन दे दो, नया जीवन ले लो। पुराना कखपन दे दो, नया जीवन ले लो, लेकिन पहले दो फिर लो। मैं बहुत बड़ा शराफ हूँ, एक हाथ से लेता हूँ एक हाथ से देता हूँ। अगर दिए बिना लेने की कोशिश करोगे तो नहीं दूंगा। तुम पुराना दो, मैं नया देता हूँ। और कैसे दो? कितना सहज बाबा ने कहा कि मैं आया ही हूँ गरीबों को अमीर बनाने के लिए। बच्चे, जब तक बैगर नहीं बनोगे प्रिंस नहीं बन सकते हो, गरीब नहीं बनोगे अमीर नहीं बन सकते हो। दुनिया में कोई ऐसा स्थल नहीं जहां कोई साधु संत महात्मा पीर फकीर किसी को ये कहे कि आओ आपको गरीब बनने का ज्ञान देते हैं और फिर आप गरीब से फिर अमीर बनोगे। कौन गरीब बनना चाहता है? जितना भी है उतना ही ठीक है। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को यही कहा है, पहले गरीब बनो फिर अमीर बनोगे। और वो हम लालटेन आकर मिली है उसको, वही लालटेन थी जो गुम हो गई थी, वही तो बच्चे कल्प पहले वाले ही तो आकर मिले हैं। अब गरीब कैसे हमको बनाता है? वे आप सब पुराने हैं, जानते ही हैं कि बाबा की यही आज्ञा है कि जब तक तेरा मेरापन किसी भी चीज में है तब तक तू गरीब नहीं है, तो भविष्य का शाहूकार नहीं बन सकता। सबसे पहले जो कुछ तेरा है तो मन से एक बार ये कह दे कि मेरा कुछ नहीं है, ये सब कुछ तेरा ही है। जिस भक्ति मार्ग में हम भगवान के आगे पूजा प्रार्थना अर्चना आराधना करते हुए कहते चले आए कि सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा, लेकिन प्रैक्टिकल तो जीवन नहीं थी। वर्तमान समय बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं कि जो कुछ तेरा है वो मेरा कर दे। जब तेरा कुछ नहीं रहेगा, ये तन भी तेरा नहीं, ये धन भी तेरा नहीं, ये घर भी तेरा नहीं, ये जो तेरे संबंध है वो भी तेरे नहीं, तो सब कुछ मुझे दे दे। और फिर कितनी सुंदर बात हमें सुनाते हैं कि सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, ले नहीं लूंगा, मुझे तेरे ऊपर विश्वास है कि तू मुझे दे सकता है, तो इसका मतलब कि मेरा विश्वसनीय पात्र है तू। दे करके फिर मैं तुझे ही इस प्रॉपर्टी का ट्रस्टी बना दूंगा। तुम मेरी चीज को, अमानत को संभाल करके रखना और जहां तक मेरी आज्ञाएं हैं उनको वहां और वैसा ही इस्तेमाल करना, अपने मन मत से कहीं इस्तेमाल ना करना, क्योंकि अब ये तेरा कुछ नहीं। अगर सचमुच तेरे जो भी चीज है तू मेरा समझ के इस्तेमाल करेगा, तो आप सोचो ईश्वर का समझ कर इस्तेमाल करने से उन सब चीजों में कितना बल और कितनी शक्ति भरपूर हो जाएगी। कभी हम कह देते हैं कहाँ जा रहे हैं, हम अपने घर जा रहे हैं, फौरन आए, मेरा कहाँ से आया, मैंने तो बाबा को घर दे दिया, मैं बाबा के घर जा रही हूँ। ये कपड़े किसके पड़े? मेरे पड़े हैं। ये बाबा के दिए हुए मेरे ही हैं, लेकिन बाबा के हैं ये कपड़े, ये पड़े हैं यहाँ पर। ये किसकी संतान है? ये बच्चे किसके हैं? ये बाबा के बच्चे हैं जिनकी संभाल के लिए बाबा ने मुझे दिए हुए हैं। मेरा कुछ नहीं। जब तक गरीब नहीं बने अमीर नहीं बन सकते, जब तक बेगर नहीं बने प्रिंस नहीं बन सकते, ये हमें तीव्र पुरुषार्थ के लिए बाबा ने बहुत सुंदर युक्ति बता दी। आप सोचिए, पल पल में मुझे बाबा की याद आएगी। ये टेबल है, ये बाबा का टेबल है, थोड़ा पुराना हो गया, इसको नया करा लेती हूँ। ये कपड़ा फट गया है, इसकी सिलाई करा के, इसको प्रेस करा के ठीक करके रख दूँ, ये बाबा का है। जब पल पल हम बाबा 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 करेंगे तो ये बाबा की याद की सहज युक्ति होगी। और जो हमारे संस्कार पुराने देह और देह के संबंधों में अटैच लगाव वाले हैं, ये सब संस्कारों का परिवर्तन स्वतः ही होता चला जाएगा। क्योंकि हमने बाबा बाबा जब कहा तो ये बाबा की याद की युक्ति है। अब कोई सोचे कि ऐसा गरीब बनना क्या मुश्किल है, वो भी गरीब बनते नहीं है। जबकि बाबा कहता है एक देगा लाख पाएगा, तुमने एक चीज दी लेकिन लाखों की करके मैंने तुझे दी, क्योंकि तेरे देने के बाद जब वो मैं तुझे देता हूँ तो उस चीज की कितनी वैल्यू हो जाती है। वही बूंदी बाजार से लेकर जब हम भगवान को चढ़ा देते हैं और पुरोहित पंडित जी हमको वापस बूंदी का आधा लिफाफा या पौन लिफाफा दे देता है, अब हम उसको क्या कहते हैं, प्रसाद लिया है, सबको दो दो दाने भी बांट के खिला दो, क्योंकि भगवान का प्रसाद है। अगर हर पल हमारे मन में ये बात आ जाए कि मेरे पास जो कुछ है ये प्रभु प्रसाद है, मेरा अपना कुछ नहीं है, सब कुछ बाबा का है, और बाबा का समझ इस्तेमाल करें, बाबा का समझ उसको देखें, तो आप सोच सकते हैं कि प्रतिपल बाबा की स्मृति के साथ साथ हर चीज की कितनी कद्र हो जाएगी, और हर चीज को एक का पदम बनने के कारण कितनी वैल्यूएबल वो चीज कहलाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं वैल्यूएबल एक कणा भी फेंका नहीं जाता। इस पर बात करते हुए मैं बीच बीच में बाबा मामा की बातें सुनाती रहूंगी कि हमको याद है जब बाबा हम बच्चों के साथ मामा कोई पालक वगैरह साफ करने के लिए बैठते थे तो पहले बाबा मामा बैठते थे, देखते ही सारे बच्चे भागते चले आते थे कि हमको भी बाबा के साथ ये काम करना है, क्योंकि मौका है बाबा मामा के साथ बैठने का। अब पालक साफ हो रही है, सभी बच्चे बड़े 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 पत्ते सब साफ करते जा रहे हैं, लेकिन जो छोटे छोटे रह जाते हैं कहते फेंको, इनका क्या करना है। और मामा ने फौरन कहा ये सब बच्चे, ये सब बाबा मामा की तरफ कर दो, जो छोटे पत्ते हैं ये बाबा मामा की तरफ कर दो, ये बाबा मामा साफ करेंगे। बच्चे एक एक कणा आपको मालूम है पद्मों की है, क्योंकि जिन बच्चों ने इस यज्ञ में आहुति डाली, धन दिया, उनके धन से चीज आई, बाबा को उसको रिटर्न करके एक का पद्म देना है। इसलिए तुम्हारे लिए तो साधारण चीज है, लेकिन बाबा के लिए मामा के लिए साधारण नहीं है या साधारण। तो कर्म करके साथ सिखाते थे कि हर बच्चे को किस प्रकार बाबा की हर चीज की वैल्यू होनी चाहिए, कदर होनी चाहिए। पहले मेरी है, ठीक नहीं लगती फेंक दो, अभी बाबा की है, असफल ना हो जाए, कहीं सफल हो जानी चाहिए, वेस्ट ना चली जाए, क्योंकि बाबा की है। तभी बाबा कहते हैं बहुत बड़ा शराफ हूँ अगर मुझे उस समय देंगे जिस चीज की जब आवश्यकता नहीं है, बाबा नहीं लेगा, क्योंकि उसे एक का पदम भर के देना है, लूंगा तब जब यूज करने की जरूरत होगी। अगर इस्तेमाल करना ही नहीं हो सकता, उस समय इस्तेमाल की जरूरत ही नहीं उस चीज की, तो बाबा स्वीकार ही क्यों करेगा। तो दाता हम बच्चों के पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए बहुत सी युक्तियां बताते हैं, जिस पर मैं देखती हूँ पुरुषार्थ तीव्र करना क्यों जरूरी है। क्योंकि इस समय हम ये समझते हैं कि पुराने जन्म जन्म के किए हुए कर्म, बनाए हुए संस्कार, ये इसी समय मुझे परिवर्तित करने हैं, और नए भविष्य की दुनिया के लिए नए देवी संस्कार मुझे 21 जन्मों के लिए बनाने हैं। ये बहुत बड़ा काम है मेरे पास। विकर्मों के खाते जो जन्म जन्म के बने हुए हैं, उन्हें भस्म करना है और श्रेष्ठ कर्मों से जन्म जन्म की पूंजी को मुझे जमा करना है। ये बहुत बड़ा काम है मेरे पास। किसी प्रकार का भी कोई हिसाब किताब किसी से रहा हुआ है, उसे वर्तमान समय पूरा करना है, क्योंकि फिर जन्म जन्मांतर के लिए मुझे इस हिसाब किताब से मुक्त हो जाना है। जब हमको ये पता चलता है कि यही एक समय है, यही एक जन्म है, जिसमें हमको सारा पुराना खाता साफ कर और भविष्य नया जमा करना है, तो कितने पुरुषार्थ के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। बाबा सदा कहता है, आपको केवल नई दुनिया में नहीं जाना, नई दुनिया में जाने से पहले मुक्ति के द्वार में जाना है। कुछ भी तेरे साथ नहीं चलने वाला है, लेकिन जो तेरे साथ चलने की पूंजी है, गुण है, शक्तियां हैं, इन पूंजी को भी जमा कर लेना, क्योंकि जाने के बाद फिर नई दुनिया में तुझे आना भी है। इसलिए पुरुषार्थ में ध्यान रखना कि जाने की तैयारी भी है, फिर आने की तैयारी भी जरूर करना, और ख्याल रखना मुक्ति से जाने से पहले रास्ते में कहीं चुंगी आदि का काम ना हो जाए। वो चीजें जो मुझे ले नहीं जाने, कहीं वो इकट्ठी तो नहीं की हुई, जाना रुकावट हो जाएगी, जा नहीं पाएंगे। कौन सी चीजें, किसी प्रकार का तनाव है, किसी प्रकार का बोझ है, वो मुझे उड़ने नहीं देगा, क्योंकि मुझे देवता बनने से पहले फरिश्ता बनना है। और फरिश्ता तभी बन सकते हैं जब सब प्रकार के बोझों से हल्के हो जाएंगे। अगर किसी प्रकार का तनाव जीवन में है, भय जीवन में है, किसी प्रकार का किसी न किसी से मोह ममता के रगे या रस्सियां बंधी हुई हैं, आत्मा जा नहीं पाएगी, पहुंच नहीं सकती है, इसलिए ये सब चीजें मुझे ठीक करनी है। अब ये सब ठीक करने के लिए मुझे कितना पुरुषार्थ में तत्पर होना है। जिस पर मैं हमेशा सुनाती हूँ, एक बार मामा ने ये बात कही थी कि पुरुषार्थ करो, लेकिन आपकी जो पुरुषार्थ की स्पीड होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, उसको कहते हैं रेस स्पिरिट। जैसे कोई रेस में चलता है, तो आप देखिए रेस की स्पिरिट उनकी जाने की कैसी होती है। अगर 6 लोगों ने रेस में भाग लिया है कि यहाँ से दौड़ना है, सामने हाथ लगा के फिर वापस आना है, तो 6 खड़े हैं और रेफरी जिसके पास विसल है, वो विसल लेके एक साइड में खड़ा है और वो ये कहता है कि 3rd विसल पर आपको भागना है। आप देखिए वो सभी रेस में भागने वाले कैसे भागते हैं, खड़े हैं ऐसे, बस ऐसा है कि अभी विसल हुई और अभी हम गए, अभी विसल अभी गए, खड़े ऐसे, अभी रेफरी ने विसल मुंह में डाली तो कहीं भाग उठते वापस आओ, अभी तो मेरी विसल हुई नहीं, अभी तो मुंह में डाली है। तीव्र पुरुषार्थ का मतलब ही क्या है कि बाबा ने जो कहा वो मैंने किया फौरन। तो रेस स्पिरिट का मतलब है जैसे रेस में कोई खड़ा है तो विसल होते ही वो भागता है, लेकिन भागते हुए कहाँ, कैसे भागता है, ना दाएं देखता है ना बाएं देखता है। अगर दाएं बाएं देखने लगेगा तो रेस में भाग नहीं सकेगा। जैसे आज ही बाबा ने कितना सुंदर रेस की बात ही कही कि किसने किया है, अभी कौन कर सकता है, ऐसा तो होता ही है। तो बाबा ने कहा किसी ने नहीं किया, अभी तक कोई नहीं ऐसा कर सका, तुम कर लो, पहला नंबर आप ले लो। ये क्यों समझते हो कोई नहीं कर सका, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता तो मैं कैसे कर सकूंगा, ये नहीं कर सका, ये नहीं कर सका, मैं कर सकता हूं। अगर ऐसी दृढ़ता में आ जाओ तो आपका पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। तो रेस स्पिरिट का मतलब है ना दाएं देखेगा ना बाएं देखेगा, लेकिन देखेगा कि इसको उस मंजिल को जहां उसने पहुंचना है। वो मकसद उसका जिसको पाना है, खाली उसकी तरफ उसका ध्यान होता है कि मुझे इस गोल को अपनाना है। तो आगे पीछे दाएं बाएं नहीं देखेगा। तो ठीक पुरुषार्थ में भी, तीव्र पुरुषार्थ का मतलब है हम कभी ये देखते हैं तो हमसे पहले चलने वाले हैं, अभी तक इनमें ये धारणाएं नहीं है तो हम कैसे कर सकेंगे, इनमें नहीं है। ईश्वर कह रहा है, सर्वशक्तिवान कहता है, मैं तुम्हें अपनी शक्ति देकर भी कराऊंगा। मैं ये क्यों कहूं कि इन्होंने नहीं की तो मैं कैसे कर सकूं, इन्होंने नहीं की वो इनका काम जाने। मुझे बाबा ने कहा मैं अपनी शक्ति देकर कराऊंगा, मुझे वो देखना है, मुझे किसी को नहीं देखना। हमसे पुराने पुराने अभी ऐसा नहीं करते, हम कैसे करेंगे, हम क्यों करें, हम इनसे तो अच्छे हैं। बाबा कहते किसी आसपास वाले से ना मिलाना, इधर देखा ये भी मेरे से पीछे है, ये भी मेरे पीछे है, मैं ही आगे हूँ, वो निकल जाएंगे आगे, आप पीछे रह जाओगे, किसी को ना देखना। इसलिए बाबा कहते देखो एक लक्ष्य को देखो, उसका एग्जाम्पल सदा बाबा देखते हैं। अर्जुन ने किसको देखा, मछली की आंख भी नहीं लेकिन आंख में उस स्थल को देखा जहां उसको बांध लगाना था। ऐसी रेस स्पिरिट बच्चों की होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसे संस्कार हैं, स्वभाव हैं, जो हम समझते हैं ये संस्कार ठीक नहीं है, तो बाबा कहते हैं अगर समझते हो तो फौरन चेंज कर लो, परिवर्तन कर लो, क्योंकि ये संस्कार आपको नई दुनिया में जाने में बाधा डालेंगे। बहुत थोड़ा समय है ये, बाबा आज नहीं, जब से स्थापना हुई तब से बाबा ने ये शब्द का उच्चारण किया कि बच्चे बहुत थोड़ा समय। कई कहते बाबा को कहते हुए भी 75 वर्ष हो गए, थोड़ा समय है, अभी तक तो बहुत चल ही रहा है। लेकिन बाबा जो कहता है बहुत समय नहीं है, थोड़ा समय है, इसका कारण क्या, उस समय की परिस्थितियों के अनुसार जिन्होंने पुरुषार्थ किया आज वो पुरुषार्थ नहीं कर सकते, आज की परिस्थितियां बदल गई हैं। उस समय जिन्होंने अपने धन से किया आज उस धन की वैल्यू क्या रह गई है, उस समय की वो धन की वैल्यू कितनी थी, आज उसका उतना ही करेंगे तो क्या वैल्यू होगी, कितनी कीमत है उस समय। उस समय तन ठीक था, कुछ कर सकते थे, धीरे धीरे तन ने भी जवाब देना शुरू कर दिया, फिर वो कर सकते हैं। तो बाबा का यही शब्द, कर लो जो करना है आज करो, बच्चे कल किसने देखा, जल्दी करो समय कम है। तो दिनों दिन हालात हमें बताते समय कम है, शरीर हमें बताता समय कम है, परिस्थितियां अपनी बताती हैं समय कम है। तो जो कर सकते हैं आज कर सकते हैं, कल किसने देखा कल कैसा होगा, शरीर कैसा होगा, मनोस्थिति कैसी होगी, वातावरण कैसे होगा, जिनके साथ हमारे संबंध संपर्क है परिवार व्यवहार में, पता नहीं वो कैसे होंगे। आज जो कर सकते वो तो कर ले, कल किसने देखा। तो तीव्र पुरुषार्थ का मतलब यही होता है कि मुझे जो करना है वो आज और अभी करना है, और वो चीजें जो मुझे मेरी मुक्ति की अवस्था में ले जाने में विघ्न बाधा बन सकती हैं, वो बातें जो मुझे सत्युग में जाने में विघ्न का रूप बन सकती हैं, मुझे उन सब चीजों को चेक करके जाने से पूर्व अपना हिसाब सेटल करना है। मान लीजिए आज हम कहीं फ्लाइट में जाते हैं तो एरोप्लेन में जाने से पहले हम देखते हैं कि वो सामान जो हमारे साथ जा सकता है उस सामान को हम तैयार करें, जो हमारे साथ नहीं जा सकता उस सामान को यहीं उतार दिया जाए। मान लीजिए अभी दुबई में कोई जाता है, हर एक को नहीं मालूम होता है कि वहाँ खसखास नहीं जा सकती है। अब कोई भोला भाला बिना इन चीजों को पढ़े पढ़ाए चला गया, थोड़ी सी खसखास की पुड़िया ले गया, कि चलो थोड़ा खसखास भून के रात को दूध में ले लिया करूंगा। वहां खसखास ले जाने वाले को उम्र कैद है या फांसी की सजा। अब उसको तो मालूम नहीं है उम्र कैद के लिए जेल में पड़ा है। अब कोई गवर्नमेंट उसको छुड़ाना चाहे तो छुड़ाए, बाकी वो छूट नहीं सकता है। ले गया। और बाबा हमको खास बताता है ये स्वभाव ये संस्कार ये तेरे साथ नहीं चलने वाला है, ये तेरे वहां काम नहीं आएगा, तुझे रास्ते में रोक दिया जाएगा, ध्यान रखना। आज हम किसी देश में जाते, इस देश का तो ये हाल है कि चेकिंग होती है, लेकिन हमारी नई दुनिया की चेकिंग ऐसे नहीं होती है। क्योंकि भारतवासी किसी कंट्री में जाते हैं तो कई बार कोई टोलियां बिना के मिठाइयां कुछ ले जाते, चलो जी प्रसाद ले गए, लेकिन किसी देश में वो अलाउड नहीं है। आप कोई दूध की चीज नहीं ले जा सकते। मान लीजिए अमेरिका में मना है तो पहले ही कुत्ता वो आपका आपके थैले के अंदर मुंह डालता है, चाहे बाद में आपका ही दिल करे यहाँ की चीज कुछ नहीं खाएंगे हम वापस, कैसे कुत्ते ने टटोला है सारा। और हमारी नई दुनिया में जाएंगे कुत्ता नहीं टटोलेगा, सब सक्रीन हो जाएगी। क्या क्या तेरे पास छिपा हुआ भी रखा हुआ है वो भी तेरा टटोला जाएगा, ढूंढा जाएगा। मान लीजिए किसी चीज का नशा है, अपनी हेल्थ का नशा है, अपने बहुत पुराने ज्ञान में चलने का नशा, या अपने आप को समझते हम बहुत होशियार हो गए ये भी नशा, या हम बहुत पुराने हो गए ये भी नशा, मैं बड़ा हूं ये भी नशा। कई नशे होते हैं, नशे की चीज आज की दुनिया में भी कोई नहीं ले जा सकता। ड्रग्स नशा वहीं पर पकड़ा जाता है। पूछ लेते आप, लिख दीजिए आपके पास कोई नशे की चीज है, नहीं तो सेक्टीन होगी तो सेक्टीन में उसमें पता आ जाएगा कि आपके पास क्या चीज है। हमारी दुनिया में ऐसा कोई मशीनें नहीं लगी होंगी। तो हमारा बाबा जो हमको नई दुनिया में ले जाने आया है कहते अब कोई नशा नहीं रखना। गायन है, सब नशों में है नुकसान सिवाय नर से श्री नारायण बनने, बस एक ही नशा रहे बाकी कोई नशा साथ न चले। अगर किसी प्रकार की बैन चीज अगर आप ले गए तो आज के देश में भी पहले डॉक्यूमेंट देखते हैं, सब कागज आपके चेक करेंगे, तो हमारा भी तो सब कुछ चेकिंग होगा। चेकिंग से पहले चेंज कर लेना। वो कहते चेक होने से पहले अपने को जो बदलना है बदल लो। मान लीजिए आपने अपने पर्स में आज एक छुरी एक चक्कू रख दिया, रास्ते में फल वल खाने के लिए एक चक्कू हो, वही चक्कू आपका पकड़ लेंगे और वो आपको देंगे नहीं, ये कहेंगे जब आप वापस आना तो लेना, कौन चक्कू लेने जाएगा, क्योंकि आने का स्थान और है जाने का स्थान और है। अब चक्कू लेने आप जाएंगे क्या? नहीं जा सकते। हमको याद है वो कुछ चीज जैसे आलू की चिप्स ये पोटैटो कुछ चीज पकड़ने के लिए ऐसा बना होता है, तो हमारे बर्तन कुछ ले जा रहे थे तो उनके बीच में वो भी एक था, हमें नहीं मालूम था बहन है, तो उन्होंने कहा खोलिए सामान, आपके सामान में कोई चीज है। हमने कहा कुछ नहीं है। खोल के कहा ये देखिए, तो हमने कहा ये क्या? तो बर्तन है। कहा नहीं, किसी को मारो तो कैसे जाएगा पेट में, तो वो निकाल लिया। तो मैं इशारा दे रही हूँ इस प्रकार की बात का कि वो चीजें जो बैन है नहीं ले जा सकते। इतनी बोतल आपने ले ली, कहा तेल ही तो है दवाई है, मेरी टांगों में दर्द है, नहीं ले जा सकते। तो पहले से समझ लेते जो चीज नहीं ले जा सकते नहीं ले जाए, उनको हम अलग कर ले। तो हमारी नई दुनिया में जो सतोगुणी सृष्टि है वहां जाने के लिए क्या चीज हमें ले जानी है क्या नहीं ले जानी, ध्यान भी तो रखना है। कोई ऐसी बात मान लीजिए आपने क्रोध किया, आपको देख के दूसरे ने क्रोध कर लिया, आपने किसी बात को बुरा मनाया, आपको देख के दूसरा भी बुरा मनाता है, ये आपके पास इन्फेक्शियस डिजीज है, छूत की बीमारी है ये आपके पास। ये छूत की बीमारी नई दुनिया में नहीं चलेगी, वहां ना क्रोध होगा ना फील होगा, ये चीजें नहीं होंगी वहां। अब यहाँ हमारे पास है, रखी हुई है, कहते हटता नहीं है, हम जा तो नहीं सकोगे ना नई दुनिया। मैं थोड़े एग्जाम्पल दे के सिद्ध करती हूँ। हमारे पास रूस देश में यहाँ से दो भाई गए और उस समय अहमदाबाद साइड में गुजरात साइड में एक बीमारी थी, वो फैली हुई थी,
पलोसी क्या उसको कहते हैं, प्लेग थी, तो प्लेग बहुत फैली हुई थी। तो उन्होंने फौरन यही रखा था कि जो भी प्लेग के देश से आएगा, इस भारत से आने वाले किसी को भी शहर में एंट्री नहीं मिलेगी। ये लास्ट फ्लाइट था जिसमें ये कहा कि चेक करके हम आपको एंट्री दे देंगे, पहले आपकी चेकिंग होगी। और साथ उन्होंने दो नर्सिस दी जो उनके साथ 24 आवर रहेंगी और दिन में 10 बार उनका टेम्परेचर चेक करती रहेंगी कि इनको कहीं बुखार तो नहीं आ जाता, कहीं अलामत तो नहीं है। सोचिए ये देश, यहाँ ऐसी चेकिंग है, हमारा देश कैसा पवित्र देश है, उसमें अगर कोई ऐसी इन्फेक्शियस बीमारी वाला चला जाएगा, जा सकेंगे? तो बाबा कहते अभी कह देते हो, क्या करे, क्रोध आ जाता है, आपको आता है, आपको देख के दूसरे को आता है, ये इन्फेक्शियस बीमारी है, छूत की बीमारी, नहीं जा पाएगी वहां। आपको छोटी छोटी बात फील होती है, आपको देख के दूसरे को भी फील होती है, और वो इन्फेक्शन होता चला जाता है, ये नहीं जा सकेगा। तो जरा टाइम तो पड़ा ही है, बठिया करके, योग लगा के, ज्ञान के आधार से क्यों नहीं हम इन छूत की बीमारियों से मुक्त हो जाए। मान लीजिए हमने किसी को सताया है, कोई दो शब्द ऐसे कहे जो उसके हृदय में ऐसा लगा कि ये शब्द नहीं, ये मेरे अंदर चाकू या छुरा घोप दिया इन्होंने। गायन है ना कि भाई किसी भी शस्त्र का घाव भर सकता है, शब्दों का घाव नहीं भरता है। और मान लीजिए मैंने किसी को तंग किया, दुख दिया और ऐसे शब्द बोले, और फिर मैं चली सत्यु के द्वार में, तो मुझे द्वार में प्रवेश नहीं मिल सकता है। इस साकार दुनिया में भी अगर कोई ऐसा गलत काम करके अपने देश से भागकर दूसरे देश में जाना चाहेगा तो इंटरपोल को, इंटरनेशनल पुलिस को पहले से इन्फॉर्मेशन हो जाती कि हमारे देश से एक व्यक्ति इस प्रकार का, ये हुलिया उसका है, ये देश से ऐसा ऐसा काम करके निकला है, अगर आपके किसी भी देश में आया तो हमें वापस लौटा दीजिए। और उसको इंटरपोल वाले वहीं से एयरपोर्ट से ही वापस उनके देश में भेजते, वो दूसरे देश में नहीं जा सकता। और हम भी चाहें चलो कुछ निकल गया, कह दिया, हो गया, तो क्या हुआ, हो ही जाता, इंसान है, अभी हम कोई देवता थोड़ी बन गए हैं। ऐसा कह के यहाँ तो हम चला लेंगे, लेकिन हमारी नई दुनिया में ये सब कुछ नहीं चलेगा। तीव्र पुरुषार्थ का मतलब क्या है, जो चीजें मुझे मेरे नई प्रारब्ध में विघ्न या बाधा बनती है उनको चेक करके मुझे यही ठीक करना है। जिस पर मैं साकार बाबा का एग्जाम्पल देती हूँ, बाबा हम बच्चों को कई बार ये गाथा सुनाया करते थे कि मान लीजिए किसी को आपने कोई ऐसा बोल बोला या कोई ऐसा व्यवहार हुआ जो दूसरे को कष्ट हो सकता है, अब आप कहते हो ठीक सॉरी सॉरी, लेकिन सॉरी से काम नहीं बन रहा, क्षमा करना इससे काम नहीं बन रहा, उसके अंदर आता है चोट तो लगा दी, कह तो दिया, सॉरी कहने से क्या होगा। हम कहते कह दिया ना सॉरी, फिर क्या बोलते जा रहे हो, फिर भी अकड़ के बोलते। साकार बाबा अपना एग्जाम्पल बताते थे और बताकर हम बच्चों को समझाते थे। बाबा ने कहा कि लौकिक में मेरी पत्नी की माँ दूसरी माँ थी, उसकी सगी नहीं, उसकी सौतेली माँ थी। शायद आप में से कोई ने सुना हुआ भी बात होगी, सुनी हुई है ना, तो सौतेली माँ थी। तो बाबा ने क्या कहा, इतना ही तो कह दिया बड़े प्यार से अपनी पत्नी को, तुम्हारी सौतेली माँ आ गई, मिलने के लिए माँ आई। अब माँ ने तो शायद सुना भी नहीं, लेकिन बाबा को आया कि जिस माँ ने इस बच्ची को इतना पाला पोसा, शादी की, आज मैं दामाद होने के नाते उस पत्नी को ये कहता हूँ तेरी सौतेली माँ आ गई, अगर उसने सुना होगा उसको कितना कष्ट हुआ होगा। पत्नी को नहीं बताया, लेकिन ये कहा कि आज गाड़ी तैयार कराता हूँ, अम्मी के घर चलेंगे। पत्नी भी हैरान है कि क्यों चलेंगे, आज ही तो माँ आई थी, मिलकर गई है, अभी हम क्यों जाएंगे। कहा नहीं जरूरी काम है जाना है। और बाबा जब वहां गया तो सास भी आश्चर्य में आ गई, क्योंकि पहले दामाद वगैरह इतना तो ससुराल घर नहीं जाते थे, आज तो रोज चले जाएंगे, बात अलग हो गई है। पहले इतना नहीं जाते थे, कोई आ जाए तो समझते थे कैसे आ गया, क्या हो गया। और चले गए दोनों, और जाकर बाबा क्या करता है, देखता है कि मैं क्या करूं। और वो बाबा जाकर के पड़ा है आटा पड़ा एक पतीले के अंदर पापड़ बनाने का, और क्या कहता है, अम्मी मैं ये सारे पापड़ मैं बनाऊंगा। कहती आप और पापड़ बनाएंगे, शाहूकार आदमी है और वो साधारण थी, और मेरा दामाद मेरे घर में पापड़ बनाए, ऐसा नहीं होगा। कहा नहीं मैं पापड़ बनाऊंगा, किस लिए, मैंने जो गलत बोल बोला है उसका प्रायश्चित कैसे करूं, जो इसको वो बोल तो भूल जाए लेकिन ये सुख मेरा याद आए। तो बाबा ने बैठ के सारा दिन काफी टाइम लगा के पापड़ बनाए, और सास कुर्बान जा रही है, अरे ऐसा दामाद दुनिया में किसको मिलेगा जिसका दामाद देवताओं से भी ऊंचा है, इतनी खुश है। लेकिन उसने सुना भी शायद नहीं था कि मेरे दामाद ने मेरे लिए सौतेली माँ कहा है। लेकिन बाबा को स्वयं रियलाइज हुआ कि मैंने जो बोल बोला वो गलत बोल बोला, अगर ये बोल ये सुन लेती तो इसको कितना कष्ट होगा। तो बाबा अपना लौकिक उदाहरण सुनाकर हम बच्चों को समझाते थे, अगर बच्चे कोई गलती से बोल निकल भी जाए, व्यवहार हो भी जाए, लेकिन इतना अच्छा करना, इतना अच्छा करना, इतना अच्छा करना कि उसको तेरी गलती तो भूल जाए लेकिन तेरी अच्छाई के गुणगान गाए, तब समझना कि तेरा किया हुआ क्षमा हो गया। अगर तुमने खाली शब्दों से कह दिया सॉरी माफ करना हो गया, वो भी अकड़ से कि बड़ी बात है मैंने क्षमा कह दिया, नहीं, उसको आपकी अच्छाई की याद है। मानो क्षमा भी अगर इतनी नम्र भाव से कहते हैं कि मेरे से गलती हो गई, क्षमा कर देना, मैंने बिल्कुल देखा नहीं था। मान लीजिए ऐसे प्यार से इस भावनाओं से कहते जो उसके हृदय में जाके लगते हैं बोल, कि चलो छोटी सी तो बात हुई लेकिन इतने बड़े व्यक्ति मुझे कहते हैं क्षमा करो, तो उनको अंदर से ऐसा है कि कितने निर्माण है ये, कितनी महान है ये आत्मा। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ का मतलब क्या, कोई भी भूल हो जाए, विशेष कहा गया है उस भूल को दोबारा रिपीट ना होने देना। अगर एक भूल हो गई और फिर वो भूल होती चली जाए, और एक भूल को आपने खत्म करने के लिए 15 साल से ज्ञान में चल रहे हो और पुरुषार्थ भी समय प्रति समय करते हैं, लेकिन 15 वर्ष में भी अभी भी समय प्रति समय वो भूल हो जाती, और आप सोचिए एक भूल अगर 15 वर्षों में ठीक नहीं हुई तो क्या हमारे पास 300, 400, 600 वर्ष पुरुषार्थ के रखे हैं जो हम अपने संस्कारों को बदल लेंगे, समय तो बड़ा कम है। इसलिए बाबा कहते हैं कभी शांत में भक्ति में बोलते थे, कभी अकेले बैठकर ईश्वर के गुनगाया कर, मन मंदिर में गाफला झाड़ू रोज लगाया कर, कोई न कोई आक्रमण हमला होता है तेरे मन में, रोज के रोज उसमें सफाई कर, कोई चीज कोने में पड़ी रह न जाए। तो हम भी इस प्रकार के जो स्पेशल प्रोग्राम होते हैं जिसमें आप घर परिवार से फारिग होकर व्यवहारिक जिम्मेवारियों से निवृत्त होकर अपना समय देते हैं, समय देने का मतलब इतना सुंदर हम अपना निरीक्षण करें, चेक करें, कहीं कोई छिपा हुआ पुराना स्वभाव संस्कार जो लंबे समय का है वो रह न जाए। और बाबा कहते लंबे समय में कोई भी बीमारी अगर लंबे समय तक चलती है तो बीमारी घर कर जाती, वो बीमारी छूटती नहीं है, बीमारी को पहले से ही कहते निप्त इवल इन द बड, चीज को पैदा होने से पहले ही पैदा होते ही खत्म कर दो, अगर वो बुराई बढ़ती चली जाएगी फिर खत्म करने का पुरुषार्थ करेंगे तो समय श्वास चले जाएंगे। यही तो थोड़ा समय है, यही तो श्वास है जिसमें हम भविष्य जन्म जन्मांतर की कमाई जमा करते हैं। और इसी समय और श्वासों को अगर हमने अपने खातों को साफ करने में टाइम लगा दिया तो भविष्य जमा करने में हम कहां से समय लाएंगे। इसलिए बाबा बच्चों को विशेष रूप से कहता है, तीव्र पुरुषार्थ करना है तो ख्याल रखो। कई बार हम ऐसा समझते हैं कोई भूल हमसे हो भी गई मान लीजिए, और किसी ने उंगली कर दी, देखो आपने ऐसा बोल दिया, तो हम आगे से क्या कहते हैं, मैंने बोल दिया तो क्या तुमने कभी नहीं बोला, आप भी तो बोलते हो, कभी ना कहिएगा, क्योंकि वो आपका हितकर है, वो स्वयं का हित नहीं कर रहा मान लीजिए, लेकिन आपका हितकर बनकर उसने अगर आपको कह दिया, आपने ऐसे बोल दिया, आप धन्यवाद के शब्द क्यों ना कहें, धन्यवाद। और अगर आप समझते हो मैंने ऐसा बोला नहीं, इसने मुझे ऐसा कहा है, तो हम उनकी शिक्षा को स्वीकार कर लें कि ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने बोला नहीं है। हम उनके बोल को बुरा मना करके फील करते हैं और अंदर से महसूस करते हैं कि ये हमें क्यों कहा गया, तो पहले तो भूल नहीं की थी, अब भूल कर ली, क्योंकि हमने महसूस किया। और हमने क्यों महसूस किया, हम कहते हैं हमारी रेपुटेशन बिगड़ जाएगी, इनको हमारे प्रति क्या भाव रहेंगे। बाबा कहते हैं अगर आपसे कोई गलती हो गई, रेपुटेशन तो पहले ही बिगड़ गई, फिर रेपुटेशन कौन सी बनाना चाहते हो। तो कभी भी कोई भी मनुष्य अगर तीव्र चलना चाहता है, तो मैंने जहां तक देखा हम अपने निजी पुरुषार्थ से तेज नहीं जा सकते, हमको बहुतों के सहयोग की जरूरत होती है। इसलिए बाबा कहते हैं क्लास में आना जरूरी है, इसलिए बाबा हम बच्चों को यही कहता है परिवार से नाता रखना जरूरी है, क्योंकि परिवार तेरा हितकर वाला है। किसी में अगर कमी है तो तुझे अपनी कमी छांटने का, जांचने का, चेक करने का मौका मिलता है कि जो चीज इसमें मुझे नहीं अच्छी लगती कहीं वो मेरे में तो नहीं है। और अगर अकेले अकेले जीवन यापन करोगे तो आपको क्या मालूम क्या मेरे में अच्छा है क्या मेरे में बुरा है। इसलिए हमेशा बाबा कहते हैं पढ़ाई सेवा स्थान पर होती है। केवल बाप से संबंध से मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं प्राप्त होगी, दैवी परिवार का संबंध भी बहुत जरूरी है, क्योंकि संगठन से ही हम आगे बढ़ेंगे। कई बार ऐसा होता है बाहर से कोई समझते ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम स्वयं स्वयं को समझते हैं कि मैं कितना अच्छा हूं, मुझे आत्मा को मालूम है। इसलिए कई बार हमारे अंदर आत्मा की आवाज आती है, ऐसा ना करो ये ठीक नहीं है, लेकिन हम अंतरात्मा की आवाज को दबा देते हैं। बाहर का जज मुझे हो सकता है मेरे केस को बरी कर दे कि कोई नहीं, इसने कोई जुर्म नहीं किया, ये बरी है, लेकिन अंदर बैठी जो हमारी कॉन्शियस सत्यता है वो हमको आवाजें लगाती है, ये जो तुम बोल रहे या कर रहे ये राइट नहीं है, फौरन चेक करें। अगर आपने एक दो बार अच्छी आवाज आपको आती है ये राइट है ये रॉन्ग है ये ना करो ये करो, और आपने उसकी सुनी नहीं, धीरे धीरे उसकी आवाज आना बंद हो जाएगी, कहती इसकी तो इनर कॉन्शियस ही मर चुकी है, अंदर की आवाज अंतरात्मा की आवाज सुनता नहीं, वो आवाज ही ठप हो जाती है। इसलिए जब कोई आवाज आए अगर ध्यान से सुने और चेक करें और चेंज करें। इसलिए कोई मामा से पूछता था कि मामा आपका विशेष पुरुषार्थ क्या रहा, मामा आप किस बात से आगे बढ़ती हो, तो मामा का यही तो बोल था कि ये तो बड़ी मुश्किल बात है बताना कि मैं आगे किस बात से बढ़ती हूँ, लेकिन मामा आप एक बात बताइए कि कौन सी बात ने आपको आगे बढ़ा दिया, तो मामा का यही तो शब्द था कि दृढ़ता। मैंने जिस भी कार्य को करना चाहा उसको दृढ़ता से किया, और जब तक उस कार्य को मंजिल तक नहीं पहुंचाया तब तक उस कार्य को छोड़ा नहीं। करना है तो करना है, और जब दृढ़ता है तो दृढ़ता हमारे कार्य को सरल करती है, क्योंकि दृढ़ता इतनी शक्ति है कि मनुष्य को कार्य सरल प्रतीत होने लगता है। इसलिए आज किया कल नहीं किया चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये स्वभाव ये संस्कार जो राइट नहीं है वो रह जाएगा, वो धीरे धीरे मेरा अपना बन जाएगा, फिर मुझे उसे जांचना भी मुश्किल हो जाएगा कि संस्कार ठीक नहीं। कई बार कई चीजें हम प्रयोग करते हैं जबकि वो बोल अच्छा नहीं है, या वो स्वभाव अच्छा नहीं है, या वो संस्कार ठीक नहीं है, लेकिन हम चला जाते हैं, कोई बात नहीं, सारे बोलते मैंने ऐसा बोला तो क्या हुआ। धीरे धीरे आपका वो बोल ऐसा लगने लगेगा कि जो मैं बोलता हूँ वही राइट है, जो मैं कहती हूँ वही ठीक है, आपको गलती नहीं लगेगा। कई बार मैंने देखा, हमारी दादी आलरुंडर दादी गुलजार दादी जी की लौकिक मम्मी हैं, शरीर छोड़ गए अभी, तो वो बहुत स्वभाव की मीठी होती थी। कोई भी कुछ कहता था उनका एक शब्द था लाल, कोई कहेगा दादी उसने ऐसा कर दिया उसने, लाल क्या हुआ, लाल हर बात में लाल कहेंगे। तो मैंने एक बार कहा दादी आप हर बात में लाल कहते हो, आपको पता है आप कहते हो, कहते नहीं लाल कहाँ लाल कहती हूँ, वो ऐसा ही बोलते नहीं लाल कहाँ लाल कहती हूँ। मैंने कहा देखो अभी भी बोला, कहा नहीं लाल तुम्हें लगता है। मैंने कहा देखो कितना वो शब्द अपना बन चुका है कि उन्हें ये पता ही नहीं चल रहा कि मैं लाल कह रही हूँ। चलो ये तो मीठा शब्द है, और अगर कोई कड़वा बोलने लगे तो कड़वा भी वो अपना बन जाएगा, ऐसा लगेगा क्या हुआ मैंने तो नहीं बोला, कहेंगे आपने अभी तो कहा, जैसे कईयों की आदत बन चुकी है, गाली निकाले बिना वो बात ही नहीं करते, हर बात के साथ कोई ना कोई गाली जोड़ी होती। बाबा ने नहीं महावाक्य उच्चारण किए, मुरली में आपने सुना होगा, बाबा ने कहा कईयों का झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है कि आपने मुझे गाली निकाली, वो कहते मैंने निकाली ही नहीं, क्योंकि वो तो हर बात में गाली से ही बात करता था, वो कहते मैंने तो इनसे बात की, मैंने गाली कहाँ निकाली, लेकिन उसकी आदत थी कि हर गाली के साथ ही बात करना। अब दूसरे जिसको नहीं मालूम है उसको तो ये लगा ना मुझे गाली निकाली, और वो कहते मैंने गाली निकाली नहीं, फैसला कौन करे, संस्कार इतना पक्का हो जाता है। इसलिए बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थ कोई और बात नहीं है, तीव्र पुरुषार्थ का मतलब मुझे स्वयं का परिवर्तन करना है। अगर मुझे कोई इशारा भी देता है तो मैं ये ना कहूं कि आपने मुझे ऐसा क्यों कहा, दूसरे भी तो ऐसा करते हैं, दूसरे करते हैं कोई बात नहीं, मुझे नहीं करना है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई दूसरे गलती करते हैं, हम कहते हैं ये तो गलती करते ही हैं, भाई मैं तो ऐसी गलती नहीं करती। बाबा कहते ये भी पुरुषार्थ तीव्र नहीं है, दूसरा गलती कर रहा है, कमजोरी उसमें आ रही है और आपको मालूम है, लेकिन आप ये कहते हो कि मैं गलती नहीं करता या नहीं करती हूँ, मैंने कभी ऐसा बोल नहीं बोला है, अगर दूसरा करता है और आपको पता है और आप नहीं करते हो, अपने को राइट समझते हो, तो दूसरे करते के लिए आप क्या कर रहे हो, कहते हम क्या करेंगे, वो अपने को बदले नहीं। बाबा कहते हैं एक परिवार के संगठन का ये पुरुषार्थ है, ये अकेले मंजिल में पहुंचने की बात नहीं है, सबको मिलकर पहुंचना है। अगर कोई आत्मा कोई गलती करती है तो आप इतनी शुभ भावना, इतनी मंगल भावना, इतनी कल्याण की भावना उस आत्मा को दे दो, जो वो आत्मा भी अपनी इस कमजोरी और कमी से छूट जाए। नहीं साकार बाबा ने, बाबा की मुरली आपने सुनी है, मुरली में बाबा ने बड़ा सुंदर कुछ दिन हुए कहा कि जब शिव बाबा ने ये कहा कि तुझे ऐसा नारायण जैसा बनना है, तो बस मुझे तो नारायण बनना है, हीरे कोयले लगने लग गए, वैराग्य आ गया, सब कुछ छोड़ दिया, चल अचल संपत्ति सब कुछ नाम कर दी, मुझे तो स्वर्ग में जाना है, बस मैं अब गया कि गया। लेकिन ये तो सोचा ही नहीं था कि स्वर्ग में अकेला जाके क्या करूंगा, औरों ने भी तो चलना है। राजा बनूंगा तो रैयत भी होगी, राजा बनूंगा तो कर्मचारी कार्यकर्ता भी तो होंगे, ये तो सोचा ही नहीं था। ये तो अभी पता चलता है कि मेरे अकेले के बनने से तो सब नहीं बन जाएंगे। ये तो पीछे पुरुषार्थ का पता चला कि लंबा पुरुषार्थ लंबे समय का चाहिए। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ करना है तो मुझे अपना ही नहीं करना, औरों को भी तो चलना है, चाहे वो कितना भी साधारण है। कोई ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करता है वो आत्मा, लेकिन उसके लिए भी मेरी मंगल भावना सदा बनी रहे कि ये आत्मा भी अपनी इस कमजोरी से छूट जाए। मान लीजिए ड्रामा है, ड्रामा के अंदर राजा भी तैयार, रानी भी तैयार, रैयत भी तैयार, सब तैयार हो गए, पर्दा खुलेगा। कारण क्या हुआ कि वो जो दरबारी है वो तैयार नहीं हुआ। वो दरबारी ढूंढ रहे वो कहाँ है। अब जब तक दरबारी दरवाजा न खोले, पर्दा न ऐसे करे, तो राजा जी वहां से गुजरे कैसे। अब राजा भी तैयार खड़ा, रानी भी तैयार खड़ी, रैयत भी तैयार, सब तैयार है, दरबारी नहीं मिल रहा, वो पता नहीं कहाँ गया, क्या कर रहा है। अब सब कहते जी ड्रामा लेट क्यों हो रहा है। भाई लेट किस कारण से हो रहा है, दरबारी के कारण। अरे दरबारी भी तो इम्पोर्टेंट आदमी है, वो नहीं होगा दरवाजा कैसे खोलेगा। राजा की शान क्या होगी जब तक वो ना पहले कहे कि राजा महाराज विराज पधार रहे हैं, तब तक राजा जी निकलेंगे कैसे। अब वो दरबार तो हम कहें कि सारे काफी तो तैयार हो गया, भगवान स्वर्ग का द्वार खोले ना। वो कहते तुम तो तैयार हो गए, लेकिन कई मेरे दरबारी रहे हुए, मैं उनके लिए रुका हुआ हूं। इसलिए किसी के पार्ट को हम कम ना समझे कि मेरा पार्ट अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, सारे अच्छे हैं, क्योंकि सब प्रभु के चुने हुए विशेष रतन। चाहे कोई राजा हो या रानी, रैयत हो या दरबारी, कोई भी हो, लेकिन बाबा का तो चुना हुआ रतन। हर एक अपना अपना पार्ट महत्वपूर्ण। हम किसी को अपने मन से कभी महत्व कम न दे दें, सदा समझे ये भी महत्वशाली आत्मा, उसको भी उसी सम्मान से और सत्कार की भावनाओं से देखें। किसी के अंदर की मैल को निकालने के लिए उसके अंदर आपको कांटा चुभता है तो सुई थोड़ी और अंदर डालनी पड़ती है, क्योंकि कांटा ऊपर से निकलने वाला नहीं, ऊपर से टूट चुका, अंदर चला गया। सुई को अंदर से उस कांटे को निकालना पड़ेगा। जिस पर साकार बाबा का एक एग्जाम्पल है कि एक बार बाबा के पास पार्टीज आती थी तो एक एक पार्टी करके बाबा से कमरे में मिलने के लिए जाती थी। तो एक बहन थी, उसने बाबा को जाकर बताया कि बाबा एक बच्चा इस ग्रुप में आया है, बाबा जिसको कहते ना मरे ना मंजा छोड़े, ऐसा वो प्राणी है, इतनी डिस सर्विस करता है, बस स्टैप पर जाके खड़ा हो जाएगा, कहेगा भगवान आ गया है, नरक जा रहा है, स्वर्ग आ रहा है, छोड़ दो सब कुछ चलो। अब इसको इतना मना करते हैं, ऐसे नहीं बोला करते, लोग हमें कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारियां क्या करती हैं। वो कहते हैं मैं संदेश देता हूँ। क्लास में मुरली के समय उसने मुरली नहीं सुनी, वो कहते आप मुरली सुनो, मैं बाबा का संदेश देने जा रहा हूँ। मुरली सुनने से क्या होगा, तो पता चल गया भगवान आ गया, सबको बताने जा रहा हूँ कि भगवान आ गया। जो उसका बोल है, जो उसका व्यवहार है, घर वाले भी उससे तंग हैं, देवी परिवार भी तंग है, निमित्त बहन भी तंग है, लेकिन वो बदलता नहीं है। और जब मधुबन ग्रुप जा रहा है तो वो बच्चा क्या कहता है कि दीदी मुझे भी मधुबन में जाना है। दीदी कहती है देखो आप जब तक बदलोगे नहीं मधुबन नहीं ले जाएंगे, आपको कितनी बार कहा घर वालों को खुश करो, समय पर मुरली सुनो, योग करो, ये सब करने से होगा, ऐसे मधुबन नहीं जाएंगे, मैं तो ग्रुप में नहीं ले जाऊं। ठीक है, मधुबन चली गई, देखा तो वो तो पहले ही खड़ा है वहां बाहर दरवाजे, अरे ये तो पहले ही आ गया, और आ ही नहीं गया, बहन बाबा से ग्रुप में मिलना है, तो वो भी साथ साथ चल रहा है। अब उसको अगर कुछ कहते हैं तो तमाशा बनता है, वो यही कुछ शोर मचाना शुरू कर दे, चुप है सब। लेकिन बहन ने जाके बाबा को कह दिया कि बाबा ऐसा ऐसा हुलिया बता दिया, एक व्यक्ति है, बाबा बहुत तंग करता है, क्लास में भी डिस्टर्ब करता है, सेवा में भी है, ना आना बंद करता है ना धारण करता है। तो बाबा को सुना दिया, ठीक है, बाबा ने सुन लिया। और जब बाबा के पास ग्रुप गया तो वो भी हीरो बन के साथ चला, और हीरो बैक साइड में नहीं बैठा, आगे साइड में होके आगे आगे बैठा, कूद के भी वो आगे आ रहा है, बाबा देख रहा है कूद के भी आया, तो पता चल रहा है ना आदमी कौन क्या होगा, सब बैठे हुए और वो सबसे चूक कूद के आगे आया, ठीक है। तो बाबा सब बच्चों से एक एक से मिल रहा है, गले लग के लगाकर मिल रहा है, मुख में टोली डालकर मिल रहा है, और जब वो बच्चा आया तो बाबा ने उसको भी बड़े प्यार से गले लगाया। बहन ने कहा अरे अरे, अंदर मन सोचता है बाबा तो भूल गया कि यही था यही था जिसने ना मरे ना मंजा छोड़े, और बाबा उसको कितना गले लगा रहा है, तो बहन की क्या दशा, सारा अपना रिफ्रेशमेंट गई, देख रही है, और बाबा गले ही नहीं लगाता, टोली मुंह में डालता है, और फिर कहता है लच्छू बच्ची जो स्पेशल टोली तुमने रखी है ना बाबा की, लो मेरा स्पेशल सर्विसेबल बच्चा है, इसको मैं स्पेशल टोली खिलाऊंगा, इसको स्पेशल टोली खिलाऊंगा। बहन की तो धड़कन और बढ़ गई, और बाकी भाई बहन भी बहन जी की तरफ देख रहे हैं कि बहन जी देखो क्या हाल हो गया। अब बहन जी भी समझती, बाबा को तो बताया ही थी, बाबा ने ऐसा किया मैं क्या कर सकती हूँ। बाबा ने उसको टोली दो टोलियां खिलाई और इतना गले लगाया और प्यार किया। बाबा था, बाप था वो, तो प्यार करने के बाद पार्टी मिल ली, बाहर निकला, बाहर निकल के थोड़ी देर के बाद कहा कि बहन जी मुझे बाबा से पर्सनल मिलना है। बहन ने कहा ये तो चढ़ गया, ये तो मालूम ही था कि चढ़ जाएगा और यही कहेगा, तो मुझे बाबा से पर्सनल मिलना है। तो बहन ने कहा कुछ कह नहीं सकती, मधुबन आ गया तो बाबा को जाकर कहा कि बाबा वही भाई वो कहता है मैं पर्सनल मिलना है। बाबा ने कहा बच्ची भेज दो उसको, बाबा भी बड़ा दयालु हो गया, उसको पर्सनल मिलने का भी टाइम दे रहा है। तो पर्सनल मिलने के लिए बाबा के पास गया, और पर्सनल मिल करके बाबा के सामने इतने आंसू बहाए उसने, बाबा मैं बिल्कुल निकम्मा हूं, मैंने आज्ञा नहीं मानी, मुझे बहनों ने भी कहा लेकिन मैं डिससर्विस करता रहा, बाबा आप मुझे कहते हो मैं सर्विसेबल हूँ, बाबा मैं कोई सर्विसेबल नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा हूँ जिसने बाबा के परिवार का भी स्नेह नहीं रखा, और घर लौकी घर में भी बाबा की छाप नहीं डाली। बाबा जैसे कोई दुखी मनो रियलाइज हो रहा है अंदर से, और बड़ा आंसू बहाते हुए बड़े प्यार से बाबा, तो बाबा ने उसको प्यार करते हुए कहा बच्चे जो भी भूले हुई हैं, जो भी तुम समझते हो गलतियां की हैं, लिख कर बाबा को दे देना, ठीक है। कहा जी बाबा, और वो शाम तक सारी गलतियां जो आज तक उसे वो गलती कहता ही नहीं था मेरी गलती है, सभी गलतियां लिख कर बाबा को देता है। और बहन रात को जाती है, बाबा समझ गया क्यों कह रही हैं बाबा, तो बाबा ने कहा बच्ची बच्चे ने अपनी सारी भूलें लिख कर दी हैं, ये भूलों का कागज बाबा ने देख लिया, तुम अपने पास रखना, इनमें से कोई भी भूल कभी भी हो जाए इस बच्चे से तो बाबा को सूचित करना। तो बाबा ये तो कभी भूल मानता ही नहीं, लेकिन बाबा ने उसके हृदय में पेनिट्रेट किया, हृदय तक पहुंचा, ये वो बाप था। हम बच्चे इतना नहीं कर सकते, बाबा जानता है कौन बच्चा कैसे हो सकता है, और बाबा ने उसके हृदय की मैल को बाहर निकलवाया। और मैं समझती हूँ, मुझे याद है वो बच्चा रेगुलर ज्ञान में चलता रहा, और जैसे एक स्टूडेंट अच्छे को चलना चाहिए वो वैसा ही चला। तो बाबा को मैं कहूँ बाबा भूल गया होगा, बाबा जानता नहीं, बाबा को याद नहीं रहा, उसको सब याद रहता है। कहता है तुम भूलनहार हो, मैं भूलने वाला नहीं हूँ, मैं बख्शनहार। लेकिन बख्शता ऐसे नहीं है, रियलाइज कराता है। अगर कोई चीज देता है तो उसका रिटर्न देता है, और जब वो रिटर्न देता है तब बाबा समझ जाता है कि अब ये बच्चा सुधरने की स्टेज पर आ गया। कई बार ऐसा होता है कि कोई हम बहनों से नहीं सुधरता है तो बाबा तक वो स्टेज जाती है, और बाबा भी मेहनत उसी पर करता है जिसको देखता है कि ये सुधरने वाला है। हम तो तीनों कालों को नहीं जानने वाले, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी तीनों कालों को जानता है, वो उस पर मेहनत करता है। अगर मैं भी कहूँ कि ठीक है कोई ऐसा है तो मैं भी उसको इतना प्यार दूं, स्पेशल टोली खिलाऊं, ये खिलाऊं, हो सकता है इससे उसका देहाभिमान और बढ़ जाए, और जो वो भूल आज तक करता था उस भूल को स्टैंप लग जाए कि भूल नहीं ये राइट है। लेकिन बाबा तो तीनों कालों को जानता है ना, किसी की गंदगी को अंदर से निकाल सकता है ना। हम बाबा के इस प्रकार के दृश्य देखते थे, जिस पर एक बात और सुनाती हूँ, क्योंकि आज कई बार हम समझते हैं टिकट हमारी एक बच गई है, चलो भाई तुम किसी को ले चलो। कहते जी मेरा भतीजा आया हुआ है बाहर से, वो बहुत दिल है उसका चलने, कहते चलो चलो टिकट तो बची है तू भी चल पड़ गई। आलमाइटी बाबा हो सकता है बाबा को पहचान जाए, ज्ञान में चल पड़े, मान लीजिए कई भावनाएं आती। तब मैं एक समय की बात सुनाती हूँ कि पहले पहले बाबा के पास ऐसे विजिटिंग रूम्स वगैरह नहीं होते थे, ऐसे टीन लगता था और टाट का पर्दा होता था आगे, और टीनों को ऐसे खड़ा किया था जहाँ सामने ये बना हुआ है ये प्लेटफॉर्म सा नीचे, तो वहीं कोई आता था उसको अटेंड किया जाता था। तो समय प्रति समय बाबा कुछ ऐसे एजुकेटेड भाई या कुछ ऐसी बहनें अगर आवश्यकता समझते थे तो बुलाकर रखते थे कि कोई अच्छे लोग आए उनको अटेंड करने के लिए, क्योंकि अधिकतर अपनी दादियां सेवाओं पर निकल चुकी थी। एक बार एक भाई हमारे जो उस समय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, बाद में वो जीएम बने थे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के, तो वो उस समय यहीं थे, बाबा ने बुलाया हुआ था। तो उस दिन अचानक जब वो यहाँ थे तो एक मिनिस्टर के पीएस जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं वो वहां पर आए, और ब्रदर वो भाई पीएस को देखकर बहुत खुश हो गए कि इस मिनिस्टर, जिस मिनिस्टर का ये पीएस है, इनसे हमको बहुत काम रहते हैं, क्योंकि अभी डेवलपमेंट में था अपना विद्यालय, शुरुआत थी, इसलिए बहुत ही अच्छा है कि यहाँ आए। तो उनकी बहुत प्यार से देखा, तो उसने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं यहाँ विशेष टूरिंग ड्यूटी पर आया हूँ, टूर पर आया हूँ ऑफिशियली, और मैंने ये टूर यहाँ इसलिए बनाया है कि मुझे ब्रह्मा कुमारियों के दादा से मिलना है, जो दादाजी मैंने सुने यहाँ हैं, तो मैं उन दादा से अथवा बाबा से मिलने आया, बस मुझे एक मिनट के दर्शन करके चले जाना है, ड्यूटी मेरी आबू रोड में। तो भाई बड़ी जल्दी से जल्दी गए बाबा के पास, और जाकर बाबा को कहा, बाबा एक पीएस है फ्रांफला मिनिस्टर के, और वो विशेष एक मिनट के दर्शन के लिए आया। बाबा हमको बड़ी मुश्किल होती है मिनिस्टर से मिलने जाने में, पीए ही टाइम नहीं देते, ये तो पीएस है और इससे हमारे काफी सहज काम हो जाएंगे। तो बाबा ने जब देखा कि बच्चा बता रहा है कि हमारे काम हो जाएंगे, ये हो जाएगा, बाबा ने बड़े प्यार से देखते कहा, बच्चे बाबा नहीं मिलेगा। अब बच्चे को तो एकदम ऐसा हुआ कि बाबा एक मिनट खाली कहते हैं, मैं बाबा को देख के चला जाऊंगा। बाबा ने कहा, बच्चे बाबा के घर बच्चा आया है, उस समय कोई ना कोई बहने थी यहाँ, तो फलां फलां बहन को ले जाओ, उनसे मिलाओ, उसे अच्छी तरह टोली खिलाओ, खातरी करो, कोई थोड़ा साहित्य जो है वो भी उनको दो, और बता दो जो भी बताना है। बाबा ने कुछ नहीं बोला क्या बताना है। तो भाई बाबा को कुछ नहीं कह सकता, बाबा उनके पास गए और जाकर उनकी खातरी की, और उन्हें बताया कि इस समय उनकी व्यस्तता के कारण वो समय नहीं दे पा रहे। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, हम समझते हैं कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट जिनका चलता है उनका मिनट मिनट भी बिजी होता है, वैल्यूएबल होता है, हम कभी फिर देखेंगे ऐसी कोई बात नहीं। तो मानो उनको खातरी करके भेज दिया, लेकिन जब बाद में वो चले गए तो भाई बाबा के पास आए, तो बाबा के पास बैठे, कहा बाबा मेरे मन में विचार चलता है अगर आप एक बार मिल लेते तो कितना काम हमारा हो जाता। तब बाबा ने कहा बच्चे तुम बच्चे वर्तमान को देखते हो, बाबा तीनों कालों को जानने वाला है, इस बच्चे का भविष्य क्या होगा वो बाबा जानता है। जब इस बाप की प्रत्यक्षता होगी, इस बच्चे को इतना कष्ट होगा कि मैं तो डायरेक्ट इनको मिला भी था और मैंने पहचाना नहीं, किसी तरह में स्वयं भगवान आया है मेरे इस बच्चे को, उस पश्चाताप के कारण खून के आंसू आएंगे। थोड़े समय का सुख और बहुत लंबे काल का दुख बाबा अपने बच्चे को देना नहीं चाहता। तो उनको ये है कि हमारा काम हो जाएगा, लेकिन बाप को अपने बच्चे का भविष्य भी देखना है। आप सोचिए कितना कल्याणकारी बाबा है, हम वर्तमान देखते हैं लेकिन हम भविष्य नहीं देखते। बाबा कई बार कहता है कई ब्राह्मणियां पवित्र नहीं है, नियमों में नहीं चलती हैं, बाबा से मिलने ले आती हैं और आम ले ही आते हैं। और यहाँ तक बाबा ने कहा हुआ है ब्राह्मणी सहित उस लाए हुए सहित गिरेंगे नीचे, अवस्था नीचे गिरेगी, कहते कोई बात नहीं उठ जाएगा। उनका भविष्य क्या होगा, उन आत्माओं को कल को कितना दुख होगा कि हम तो मिलकर भी आए, हमने तो आए हुए भगवान को उस रथ में दृष्टि भी ली लेकिन हमने पहचाना नहीं, बहुत कष्ट होगा। बच्चे उनको थोड़े समय का सुख और काफी लंबे समय का लंबा दुख नहीं देना चाहिए। तो बाबा की उस बात से मैं सुना रही हूँ कि बाबा बच्चों को कितनी दूरदर्शिता से देखते थे और दूरदर्शिता से व्यवहार करते थे। ओम शांति। दो मिनट बाबा को याद।
ओम शांति। मेरे ख्याल सबको ऐसा लग रहा था कि दीदी जी अभी और सुनाते जाएं और सुनाते हैं, ठीक है ये गलत है, क्योंकि मुझे तो अपने ज्ञान के बचपन की स्मृतियां जाने लग गई कि जब दीदी जी हमें यहाँ क्लास कराते थे, और ऐसी ज्ञान की गंगा जो आप अनुभव कर रहे हैं तो पहले भी बहुत अनुभव की, तो कितने सरल भाषा में शब्दों में और किस तरह सबके दिल को छूते गए, एक एक बात दिल को स्पर्श करते गए। तो आदरणीय दीदी जी का हम कोटि कोटि तहे दिल से धन्यवाद करते हैं सभी, बहुत बहुत थैंक्स।
ये बड़ी बात है।
बाबा के साकार अनुभवों से गहराई से हमें अवगत कराया ही नहीं परंतु उसका अनुभव हो रहा था, जैसे बाबा साकार में वो सीन ही मर्ज हो रहे थे। इसीलिए फिर से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। दो मिनट बाबा की याद।
समय की नदियां गाए